ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे रामा
हरे रामा हरे रामा
राम रामा हरे हरे
राम रामा हरे हरे।
श्री वृंदावन धाम की आनंद प्रभु, आपके ठाकुर जी का नाम क्या है? श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की। तो भगवान की असीम कृपा से एक ही घर में श्री वृंदावन, श्री मायापुर और जगन्नाथपुरी तीनों विराजमान और तीनों एक दूसरे से अलग भी नहीं है और अलग है भी, ऐसी विचित्र लीला है भगवान की, अचिंत भेदाभेद तत्व। तो सावन का महीना है और सावन के महीने में सब हरियाली छा जाती है, सब जानते हैं ना, सब जगह हरियाली छा जाती है, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, वातावरण आनंदमय हो जाता है। तो ऐसे में जैसे ही बादल से वर्षा होने लगती है और सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, सब जगह हरियाली छा जाती है, तो सब सखियों के और भगवान के मन में सुंदर सुंदर लीलाओं को रचाने का इच्छा होता है। वैसे ही सावन का महीना प्रेम भरी लीलाओं के लिए बहुत अनुकूल है। अब सावन के महीने में क्या होता है, जब वर्षा होती है तुरंत मोर अपना पंख फैलाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, तो सुंदर वातावरण वृंदावन धाम में फैल जाता है। तो खास करके यूपी में, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला में ऐसा रिवाज है कि जो नई नई दुल्हन ब्याह के अपने ससुराल जाती है तो उसके पहले सावन में उसको मायके लेके आते हैं और भाई जो है उसका वो उसको किसी वाहन में बिठाकर, पुराने ज़माने में रथ में बिठाकर उनको मायके लेके जाते हैं, और मायके लेके जाने के बाद सब मायके के जितने लोग हैं मिलकर वो नई दुल्हन को झूला झुलाते हैं। तो आज एकादशी है ना, तो एक थी हरियाली तीज, आप जानते हैं हरियाली तीज को, सावन का तृतीया तीसरा दिन। तो सावन के शुरू होने के पहले ही सारे भाई लोग अपने अपने नई नई ब्याही हुई बहनों को ससुराल से अपने घर ले आते हैं और झूला झुलाने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों राधा रानी का भाई सीतामा नहीं आता है। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, राधा रानी गीत गा रही है कि क्या कीर्ति भैया मुझे भूल गई है, क्या वृषभानु बाबा भी भूल गए हैं, क्या सीतामा भैया भी भूल गए हैं, क्या हो गया है, सब बरसाने के लोग मुझे भूल गए हैं, कोई मुझे लेने नहीं आया। उतने में से बरसाने की ओर से एक बंजारा आता है, बंजारा यू जो कुछ बेचने आता है, वो बंजारे की शरीर बोली यानी देह बोली होती है ना, बॉडी लैंग्वेज, उससे राधा रानी को पता चलता है कि ये बरसाने से आया हुआ है। तो उसको पूछती है क्या सुदामा भैया मुझे भूल गए क्या, तो फिर वो जाता है लौट के बरसाना और सुदामा से कहता है, मैया से बाबा से कहता है कि राधा रानी बड़ी व्याकुल है ससुराल में, इंतज़ार कर रही है कि आप लोग आए नहीं लेने के लिए, सब सखियाँ उसके साथ वाली सब बरसाने चली गई हैं। फिर उसी दिन तीज के दिन राधा रानी को लेने के लिए सुदामा भैया रथ में बैठकर बरसाने से नंदगांव आते और फिर यशोदा माई और नंद बाबा के आशीर्वाद लेकर राधा रानी उस रथ में बैठकर बरसाने चली जाती। तो एक बहुत ही अनोखी रथ यात्रा है जो केवल बरसाने में शुरू होती है और नंदगांव में रुकती है, नंदगांव से शुरू होती है, फिर बरसाना में जाती है। आज भी हरियाली तीज के दिन राधा रानी के मंदिर में एक रथ बनाते हैं और उसके घोड़े का जो मुख है वो बरसाने की नंदगांव की ओर करते हैं। बहुत सुंदर लीला होती है। और आज भी हरियाली तीज के दिन राधा रानी का जो विग्रह है वो प्रमुख मंदिर से नीचे उतर कर जो संगमरमर का मंदिर है वहाँ पर आ जाते हैं। साल में 3 बार राधा रानी नीचे आती है, राधाष्टमी, होली और हरियाली तीज के दिन। और ऐसा भाव है उधर कि पुराने ज़माने में वो स्त्रियाँ ओपनली मंदिर में नहीं आया करती थी, वो झरों के से दर्शन करती थी, कभी कभी दूर से आती थी। और कई जातियों के लोग मंदिर में नहीं आया करते थे। और अभी भी वही रिवाज है, अधिकतर सब जगह पर पुरुष ही गोसाई लोग राधा रानी की आरती करते हैं। लेकिन ये जो राधा रानी जब नीचे आती हैं हरियाली तीज के दिन या राधाष्टमी के दिन या होली के दिन, तो गोस्वामी यों की जो कन्या होती है, गोसाई कन्या, वो भगवान की पूजा करती हैं। और उसको आरती नहीं कहते हैं, उसको आरता कहते हैं। तो जब वो नीचे आती है, जो जो पुरुष लोग करते हैं उसको आरती कहते हैं, जब स्त्रियां करती है उसको आरता कहते हैं। तो ये आरता जो है वो साल में केवल 3 बार होता है और गोस्वामी की जो कन्या होती है उसके द्वारा ये पूजा की जाती है। बहुत विशेष घटना है ये। और हरियाली तीज का ये महत्व है कि हरियाली तीज के दिन सब जगह हरा श्रृंगार होता है। कल आपको विनती है कि आप भी हरा श्रृंगार करें। हरियाली तीज के दिन सारे गोस्वामी लोग जो पूजा सेवाएं होते हैं वो भी हरी धोती हरा दुपट्टा पहनते हैं, ठाकुर जो कि भी हरा श्रृंगार करते हैं, और सारा जो अलंकार वो भी हरे रंग का पहनते हैं, और जो पर्दा है वो भी हरा रंग का होता है, बैकड्रॉप भी हरे रंग का होता है। सब जगह हरा ही हरा होता है, इसलिए उसको हरियाली तीज कहते हैं। तो हरियाली तीज से श्री बांके बिहारी जी झूलना शुरू करते हैं और हरियाली तीज से पूर्णिमा तक, बलराम जयंती दिन तक वो झूलते हैं। और नंदगांव के ठाकुर जी जो है कृष्ण बलराम जी, वो व्यास पूर्णिमा के दिन से नारली पूर्णिमा के दिन तक बलराम जयंती 1 महीना झूलते हैं। कृष्ण बलराम रोज अपने मंदिर से बाहर आकर बड़े चांदी के झूला में हर रोज झूलते हैं 30 दिन के लिए। और बांके बिहारी जी तीज से लेकर पूर्णिमा के लिए, मतलब 13 दिन तक झूलते हैं। और गौड़िया संप्रदाय के मंदिरों में सब ठाकुर जी जो हैं वो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन झूलते हैं। लेकिन राधा वल्लभ जी, श्याम सुंदर जी, दामोदर जी, रंगनाथ जी, गोविंद जी, ये सब लोग तीज से ही झूलना आरंभ कर देते हैं। तो इस समय वृंदावन में बहुत ही आनंदमय वातावरण है। आपको खाली 3 बजे रूम से बाहर निकलना है तो रात तक आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर में सब जगह वो अनोखे अनोखे फूलों के, चांदी के, सोने के, मणि कंचन के झूला बनाकर, उनको सजा धजा कर, सब गोसाई लोग उनको गर्भगृह से बाहर निकाल कर एकदम जनता के नज़दीक लाकर उनको झुलाते हैं। और इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि भगवान को आनंद देना है। हमारे पास जो क्षमता है, भावना है, साधन है, रिसोर्सेस है, वो सबका इस्तेमाल भगवान को आनंद देने के लिए करना है। और झूला ये इतना सुंदर प्रसंग है, हमारे सारे आचार्य इसका सुंदर वर्णन करते हैं कि झूले में कभी राधा रानी श्री कृष्ण भगवान को, श्याम सुंदर जी को झुलाती है सखियों के साथ, तो कभी राधा रानी क्या मैंने बताया अभी आपको, कौन झुलाता है? हाँ, राधा रानी श्याम सुंदर को झुलाती है। तो कभी श्याम सुंदर राधा रानी को झुलाते हैं और कभी दोनों मिलकर सखियों को झुलाते हैं और कभी सब सखियां मिलकर दोनों को झुलाते हैं। और हम तो कैसे झुलाते हैं? सामने और पीछे, सामने और पीछे, ब्रज में साइड में भी झुलाते हैं, गोल गोल भी झुलाते हैं, ऐसे ऐसे भी झुलाते हैं, वैसे वैसे भी झुलाते हैं। और जब ये झूले का प्रसंग बहुत उत्कट भावना में आता है ना, बहुत क्या बोलते हैं, 4th गियर में आता है, पहले धीरे 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 झुलाते हैं, उसके बाद जोर से झुलाते हैं, उसके बाद और जोर से झुलाते हैं, फिर और जोर से झुलाते हैं, फिर अचानक इतना जोर से धक्का देते हैं कि एक पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। और जब वो सर्कल होता है और ऊपर के स्थान पे रथ, वो जो झूला पहुंचता है, तो राधा रानी बड़े डर के मारे कृष्ण को आलिंगन देती है, डर के मारे, और सब सखियां ताली पीटती है। फिर कभी पता नहीं उनको कभी जुलाएंगे, ऐसे एक बीच में ऐसे झटका देंगे कि पूरा सर्कल बुला करेंगे, इस तरह से जुला होता है। बहुत देर जुला खिला खेलने के बाद में कृष्ण भगवान इतने चतुर होते हैं, वो अपने कमर पट्टा से रंग निकालते हैं और होली खेलने लगते हैं। हमारे कवि कर्णपुर जो है वो आनंद वृंदावन चप्पू में आखिरी अध्याय में इसका वर्णन करते हैं, कैसे निकुंज का श्रृंगार किया गया है और निकुंज को सजाया गया है फूलों से, फलों से, पताकाओं से, दीपकों से, सब गोपियां सज धज कराई है, हर एक पेड़ को श्रृंगार किया गया, उसके बीच में फूलों की वेदी है, उसके बीच में जो कदम के पेड़ है उसके अंदर झूला सजाया है, मणि कंचन रत्न माणिक सब लगाकर, फूलों की माला लगाकर, और फिर सब सखियां मिलकर राधा और कृष्ण को झुलाते हैं। ये एक प्रकार की लीला है, कभी कभी अनेक झूले लगाते हैं, एक झूला पर सामने राधा रानी, एक झूला पर कृष्ण, दो पार्टी में सब सखियां डिवाइड हो जाती है, तो एक पार्टी कृष्ण को झुलाने आती है, एक पार्टी राधा रानी को झुलाने आती है, और फिर प्रतियोगिता शुरू होती है, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा और कौन जीतेगा। अभी आपको मैं विनती करता हूँ, ध्यान से सुनिए, तो राधा रानी बहुत जोर जोर से झूल रही है, उनके पैर जो सबसे ऊंचे पेड़ है उसके फलों को भी लग रहे हैं, इतना झूला रहे हैं, और जब झूल रहे हैं तो जब आगे जा रहे हैं तो उन्होंने जो कान में कुंडल पहना है वो भी झूल रहे हैं, और वो कान में कुंडल जो पहने हुए सुंदर सुंदर वो झूल रहे हैं, तो उनके से जो प्रकाश निकल रहा है उनके गोरे गोरे गालों पर झूल रहे हैं। आप सोच सकते हैं, कान के कुंडल लंबे लंबे झूल रहे हैं झूले के साथ, उनमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो गालों में झूल रहा है, फिर जो माला है गले में पहनी हुई लंबी लंबी माला, वो जब झूला पीछे जाता है तो माला आगे लटकती है तो वो भी झूल रही है, और जब झूला ऊपर जाता है आगे आगे की तरफ तो माला जो है वह उनके वक्षस्थल को चिपक कर रहती है, फिर पीछे फिर आगे फिर वक्षस्थल पर फिर पीछे फिर आगे, इस तरह से कमर में जो अलंकार बनाया गया है लगाया गया है वो भी झूल रहा है, दुपट्टा भी उड़ रहा है वो भी आगे पीछे हो रहा है, और क्या झूल रहा है, राधा रानी की लंबी जो चोटी है वो भी आगे पीछे झूल रही है। जब झूला ऊपर जाता है तो सारे अलंकार शरीर पर लग जाते हैं और चोटी जो है वो झूलने लगती है, झूला पीछे जाता है तो चोटी शरीर को लगती है और अलंकार नीचे चले जाते हैं। इस तरह सुंदर वातावरण जो है सबका आनंद सब सखियां ले रही है। तो कुछ सखियां कहती है कृष्ण से, अरे ठाकुर जी ये तो प्रतियोगिता में राधा रानी जीत जाएगी, देखो कहाँ तक उसका झूला पहुंच रहा है, और आपका तो झूला झुलाने देते ही नहीं, क्या हम झुलाएं आपको जोर जोर से ताकि आपका झूला भी ऊंचे ऊंचे जगह पर जाए आप जीत जाएं। तो बोले कोई बात नहीं, आप मुझे धीरे धीरे ही झुलाना, क्योंकि मैं बहुत मनोहारी दृश्य को निहार रहा हूँ। तो फिर सखियों को इच्छा है कि जोर से झुलाया जाए, इनको जिताया जाए हमारी पार्टी को, और राधा रानी की पार्टी तो फुल स्विंग में जोरदार झुला रहे हैं। बहुत देर तक ऐसे होता है, कृष्ण भगवान श्याम सुंदर जी वो झुलाने को देते ही नहीं है, और फिर समय समाप्त हो जाता है और राधा रानी को विजयी घोषित किया जाता है कि आज की झूला प्रतियोगिता में राधा रानी विजयी हो गई है। बोलो राधा रानी की जय। तो जो राधा रानी के सॉरी कृष्ण भगवान के जो पक्ष में तुंग विद्या आदि सखियां हैं वो कहते हैं कि आप श्याम सुंदर जी आप जानबूझ के क्यों हार गए। वो कहते हैं सखियों जब राधा रानी झूल रही थी तो मैं उनके कुंडल पर ध्यान कर रहा था और ये सोच रहा था कि काश मैं वो कुंडल होता जो उनके कानों में झूलता, फिर मैंने सोचा कि काश मैं वो अलंकार होता जो उनके गले में पहनाया गया है माला के रूप में, देखो जब पीछे जाती हैं तो वो झूलते रहते हैं, जो आगे जाते हैं तो उनके सीने पर चिपक के रहते हैं आलिंगन दे रहे हैं उनको, मैं सोच रहा था कि काश मैं वो गाल माला होता झूला के साथ में राधा रानी के वक्षस्थल में मैं उनको आलिंगन देता। इस तरह से वो चिंतन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसा चिंतन जो है वही मेरा आनंद है, और इस चिंतन करते समय अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मेरे लिए आनंद है। तो ये लीला जो है इसमें से ब्रज में जितनी भी लीला ठाकुर जी करते हैं उसमें सब में वो हारने का प्रयास करते हैं। आप सोचिए इस बारे में, हम सब लोग जो भी करते हैं उसमें जीतना चाहते हैं, है ना, कोई प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब भी कोई लीला करने आते हैं, और ब्रज में हर लीला में प्रतियोगिता होती है, होली के अंदर प्रतियोगिता होती है, सबके अंदर प्रतियोगिता होती है, वो सब लीलाओं में श्याम सुंदर जी हारने के लिए आते हैं। उनको अपने भक्तों से, अपने सखियों से हारना बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है उसको। और यही ब्रज के लीलाओं का सार है। यहाँ पर कोई मजा करने नहीं आता है, जो भी आता है वो सेवा करने आता है, और जो भी प्रतियोगिता के रूप में खेलते हैं उसमें सब लोग हारने को आते हैं। तो बड़ी अनोखी प्रतियोगिता है जिसमें सब लोग हारने को आते हैं, जितना कोई नहीं चाहता है। सब लोग एक दूसरे को आनंद देना चाहते हैं, सब लोग दूसरों को विजयी करने में अपना विजय देखते हैं, दूसरों को आनंदी करने में अपना आनंद खोजते हैं, और यही आनंद का सही रहस्य है। तो इस तरह से ये लीलाओं को हमको देखना चाहिए। ये लीला जो हम यहाँ पर भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उनके आनंद के लिए है और उनके भक्तों के आनंद के लिए। हम केवल आते हैं तो एक सेवक के रूप में आते हैं, ताकि उनका और उनके भक्तों का आनंद बढ़ाए। इसी भाव से सब लोग फल फूल अलंकार लेकर आते हैं, ताकि वो उनका आनंद बढ़े, उनके एक दूसरे के भावनाओं का आदान प्रदान का आनंद बढ़े, और उनके उनके द्वारा भक्तों का आनंद बढ़े, और उनके आनंद में सब लोग अपने आनंद को देखें। एक सुंदर लीला है इसमें कि कभी कभार दोनों झूले जो हैं वो सामने सामने लगाते हैं, एक में कृष्ण और एक में राधा रानी, और झूलते कैसे हैं, एक बार साथ में आते हैं फिर दूर चले जाते हैं, साथ में आते हैं फिर दूर चले जाते हैं, है ना। कभी आप सोचिए जब दूर चले जाते हैं दोनों की मालाएं जो लटकती रहती, और फिर पास में आते हैं तो उनको पैर ऐसे को छूते हैं, कभी हाथ छूते हैं, कभी कभी बीच में उनकी मालाएं एक दूसरे में फंस जाती है। सोच सकते हैं आप, इमेजिन, दोनों जब पास में आते हैं तो लंबी लंबी मालाएं जो मोतियों की है, फूलों की है, वो उलझ जाती है, और फिर झूला तो झूल ही रहा है, तो जब झूला पीछे जाता है तो सब मालाएं टूट जाती हैं मोतियों की और फूलों की, और सब नीचे गिर जाते हैं जमीन पर। तो सारी सखियां जितनी है वो प्रसाद बिनने को भागती है, गिरे हुए फूल और मोती है इसको प्रसाद के रूप में बिनते हैं। ऐसे सुंदर लीला होती है। तो ब्रज का आनंद बहुत अनोखा है, और इसमें ठाकुर जी के आनंद को प्रधान रखते हुए भक्त लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं, और इन लीलाओं को एक मनोरंजन के रूप में ना देखना चाहिए ना सुनना चाहिए। इन लीलाओं को हमेशा एक आदर के भाव से श्रवण करना चाहिए। विथ ऑ एंड रेवरेंस वन मस्ट लिसन टू दिस पास टाइम्स, नॉट एज अ मेथड ऑफ एंजॉयमेंट और सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। इन लीलाओं को हमेशा आदर के रूप में देखना चाहिए और आदर भावना से श्रवण करना चाहिए, तब जाकर इन लीलाओं का जो सही दिव्य आध्यात्मिक लाभ है वो हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। और उन लीलाओं का, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो इसमें भी अपना आनंद देखते हैं, तो वो लोग ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाएँ जो है वो उनके आनंद के लिए और हमारी सेवा के लिए, हमारी सेवा का मौका देने के लिए हैं और उनके आनंद की वृद्धि करने के लिए है। जब उनके आनंद की वृद्धि होती है सेवक भाव में, हमारे सेवक भाव में, तो अपने आप हमारे आध्यात्मिक वृद्धि होती है, अपने आप हमारे प्रेम की वृद्धि होती है, अपने हमारी भावना की वृद्धि होती है। तो हम सब लोग महामंत्र गाकर उनको रिझाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र के उच्चारण में श्री वृंदावन धाम छुपा हुआ है, इस महामंत्र में राधा और कृष्ण भी छुपे हुए हैं, इस महामंत्र में सब सखियां भी छुपी हुई हैं, वृंदावन का पूरा वातावरण आध्यात्मिक दिव्यता इस महामंत्र के अंदर छुपी हुई है। जो भी लीलाओं को आपको अनुभव करना है, जो भी लीलाएं प्रकट होती है, वो सारे इस महामंत्र में सम्मिलित हैं। ऑल द पास्ट टाइम्स ऑल द पर्सनैलिटीज आर हिडन इन दिस महामंत्र, क्योंकि महामंत्र ये क्या है, गौलोकेर प्रेम धन, गौलोक में भगवान जो लीला करते हैं उसका सार है प्रेम। प्रेम के कारण लीला करते हैं, लीलाओं के कारण प्रेम की वृद्धि होती है। तो प्रेम ही इन सारी लीलाओं का, घटनाओं का, प्रसंगों का सार है। और वो प्रेम जो है, जो गौलोक का सार है, वो हरिनाम के रूप में हमारे यहाँ प्रकट होता है। और वो हरिनाम महामंत्र के रूप में प्रकट होता है। इसका मतलब सारा गौलोक धाम ही आपके लिए इन 16 अक्षरों में प्रस्तुत है। सारी लीलाएं, सारा दिव्य आनंद इन 16 अक्षरों में छुपाया हुआ है। बाकी कलयुग में हमारी कोई योग्यता नहीं है कि तपस्या करके हम इसको जान लें, किताब पढ़कर उसको समझ लें, और दान पुण्य करके समझ लें, नदी में स्नान करके समझ लें, तीर्थ यात्रा करके समझ लें। इन किसी बाह्य प्रक्रियाओं से ये जो प्रेम का सहारा है वो हम समझ नहीं सकते। इसलिए ना कि हमारी योग्यता, हम तपस्या नहीं कर सकते, हमारी कोई योग्यता ही नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं, इतना निश्चय नहीं है, इतनी गुणों का हमारे अंदर कोई प्रादुर्भाव नहीं है। इसलिए कलयुग में ये गौलोक का जो धन है वो इस 16 अक्षरी महामंत्र के रूप में हमारे पास आया है। और जब इसका हम प्रेम से उच्चारण करते हैं, ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हैं, तो सारी जो दिव्य प्राप्ति है, तो सारा दिव्य लक्ष्य जो है वो इन्हीं 16 अक्षरों में छुपा हुआ है। जब हम श्रद्धा से, भाव से और एकाग्रता से और प्रेम से इस नाम को पुकारते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उसी में से ये अनंत लीलाएं और उनका दिव्यता प्रकट होती है और हमारे जीवन को प्रसन्न कर देती है, समृद्ध कर देती है और परिपूर्ण कर देती है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और कल भी आइए आप और ठाकुर जी को प्रेम से झुलाइए और उनको आनंद देने का प्रयास कीजिए। जब तक हमें आनंद देने का प्रयास हम करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त नहीं होता है, जब तक उनको आनंद देने का प्रयास करते हैं तो अनायास ही हमको आनंद प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।